آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ मुख्य समाचार में फेडरल सरकार ने क्वींसलैंड की सीमा योजनाओं और आगंतुकों के लिए कोविड 19 परीक्षणों पर व्यक्त की चिंता। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंतर्राज्य यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोला। और खेल में क्रिकेट, टास्मानिया ने टिम पेन सेक्सटिंग स्कैंडल से निपटने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर किया हमला। क्वींसलैंड की प्रीमियर सुश्री अनस्तासिया पलेशे ने फेडरल सरकार से राज्य की यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए कोविड 19 पीसीआर परीक्षणों पर मेडिकेयर छूट देने का आह्वान किया है, जब तक कि राज्य 90% टीकाकरण लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री श्री ग्रेग हंट ने क्वींसलैंड सरकार को लिखा है कि वह रैपिड एंटीजन परीक्षण पर विचार करें या कम से कम राज्य में और राज्य से बाहर यात्रा करने वाले लोगों के लिए पीसीआर परीक्षणों की लागत को कवर करें। निजी क्लिनिकों में पीसीआर परीक्षणों की कीमत $150 तक हो सकती है और यह स्पष्ट नहीं है कि लोग यात्रा के उद्देश्यों के लिए निःशुल्क परीक्षण प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। सुश्री पलेशे ने श्री हंट से पीसीआर परीक्षणों के लिए मेडिकेयर छूट पर विचार करने या नेशनल कैबिनेट में इन मुद्दों को संबोधित करने का आग्रह किया है।
I'll let Greg Hunt look after his job and I'll do my job. And, you know, now's not the time to fight. Now is the time to actually work together. And I'd like to see this issue resolved at national cabinet. Greg Hunt can quite easily make it a Medicare rebate. He can do that with the stroke of a pen. But it's only a temporary measure. Let me also stress this. This is a temporary measure up until we get to that 90% double dose. Once we get to 90% double dose, there is no PCR test requirement.
ऑर्कस सुरक्षा समझौते में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का आकलन एक संसदीय समिति द्वारा किया जाएगा। एक संयुक्त स्थायी समिति द्वारा ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच हुए गठबंधन की जांच की जाएगी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी तक पहुंच आसान हो गई थी। ग्रीन्स के नेता श्री एडम बेंट ने सुरक्षा समझौते का समर्थन करने के लिए लेबर पार्टी की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख राजनीतिक दलों को इस तरह के फेडरल सौदों की जाँच करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्रीय इलाकों पर प्रभाव पड़ सकता है।
If Labor's serious, they would withdraw their support for the nuclear subs deal, because the nuclear subs deal is all about Australia joining the US in increasing the likelihood of a war with China, rather than putting Australian defence first. If we want to put Australian defence first and minimise the chance of a war between the US and China, we should not be part of this nuclear subs deal, which is only going to increase tensions in the region.
फेडरल रक्षा मंत्री श्री पीटर डटन ने सोमवार को औपचारिक रूप से सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लगभग 3 साल पहले हुए चुनाव में फेडरल सरकार ने एक धार्मिक भेदभाव बिल का वादा किया था, जिसे इस सप्ताह संसद के सामने लाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको अपनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। एक संसदीय सीनेट द्वारा इस बिल पर आकलन किए जाने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि इसके तुरंत पारित होने की संभावना नहीं है। बिल को अभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि वह धार्मिक स्कूलों को उसी धर्म के लोगों को काम पर रखने की अनुमति देगा। इस बिल के चलते चिकित्सा पेशेवरों को भी सुरक्षा मिलने की संभावना है, ताकि वे अपनी मान्यताओं के विपरीत प्रक्रियाओं का संचालन करने से बच सकें। उधर न्यू साउथ वेल्स में 52,000 परीक्षणों के बाद 173 नए कोविड 19 मामले और 2 और मौतें दर्ज की हैं। राज्य की स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर कैरी चैंट ने एक ईमेल में खुलासा किया है कि उन्होंने अगस्त के मध्य में सिडनी में एक जैसे उपायों को लागू करने का सुझाव दिया था। इसके बावजूद न्यू साउथ वेल्स सरकार ने स्वास्थ्य सलाह के खिलाफ जाकर 12 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में कठोर कोरोना वायरस नियम लागू किए हैं। प्रीमियर श्री डोमिनिक पेरेटे ने राज्य के कोविड 19 प्रतिबंधों पर लिए निर्णय को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया का बचाव किया है।
We're not out of the woods yet. There will always be challenges. We have said from time to time we'll target those restrictions. That's in line with the national plan. But as a member of the previous crisis cabinet and now the COVID and Economic Recovery Committee, we will always consider the views of the health team, the mental health team.
उधर विक्टोरिया ने पिछले 24 घंटों में 827 नए कोविड 19 मामले और उससे जुड़ी 19 मौत मृत्यु दर्ज की हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लगभग 50,000 परीक्षण किए गए और राज्य में लगभग 9,500 सक्रिय कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। प्रीमियर श्री डैनियल एंड्रूस का कहना है कि जिन 19 विक्टोरियन लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 17 लोगों को वैक्सीन नहीं लगा था और उनकी उम्र 50 और 90 साल के बीच की थी।
I don't think you need any clearer demonstration than that, that vaccination is important, vaccination works, it's safe, it's free, it'll keep you out of hospital and it'll mean less trauma and less pain and anguish. For so many families, I send my deepest sympathies to all 19 of those families. This will be an incredibly difficult time for them.
आपको बता दें कि ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने लोगों ने एक टीके की खुराक और कितनों ने दो खुराक प्राप्त की थी। उधर नॉर्दर्न टेरिटरी ने 3 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए हैं। इनमें रॉबिन्सन रिवर क्षेत्र का एक शिशु भी शामिल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। नए मामलों में एक 40 वर्षीय पुरुष और एक 20 साल की महिला शामिल हैं, जो बिंजारी अबरिजिनल समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री श्री माइकल गनर का कहना है कि तीनों संक्रमण ज्ञात मामलों से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अभी और दिसंबर के बीच कुछ समय के लिए कैथरिंग क्षेत्र के लॉकडाउन को लॉकआउट में बदल दिया जाएगा। उधर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंतर्राज्यीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल दिया है। आज मंगलवार से उड़ानों को फिर से शुरू किया गया है और सीमा पार करने के लिए लगभग 30,000 यात्रियों ने आवेदन दर्ज किए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 16 से अधिक आयु वर्ग की आबादी के लिए अपने 80% वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में सुरक्षित रूप से यात्रा करना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेबर के विदेश मामलों की प्रवक्ता सुश्री पेनी वोंग ने मॉरिसन सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की संभावना पर बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बोलते हुए सेनेटर वोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन जब भी मुसीबत में होते हैं चीन पर राजनीति करते हैं। सुश्री वोंग ने श्री मॉरिसन पर लगातार झूठ बोलने का आरोप भी लगाया।
The underlying point, though, is that there is now an overwhelming body of evidence to show that Mr. Morrison's base instinct is always to lie and blame others. He lies about being at the front of the queue, about being in Hawaii during the bushfires, about electric vehicles, and about vaccine mandates. He lies about the mistakes he makes, like describing Australia's position on Taiwan as one country, two systems. He lies about others, like Anthony Albanese and even the French president. And then he tells new lies to deny his old lies.
सुश्री सेनेटर वोंग ने माना कि चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रबंधित करना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसे और अधिक कूटनीतिक रूप से किया जा सकता है। उधर भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 8,488 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए। देश में पिछले 24 घंटों में 249 नई मौतें दर्ज की गई, जिससे महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4,65,911 है। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 116 करोड़ से अधिक कोविड 19 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। अब मुद्रा दर की जानकारी में आज के दिन अमेरिका में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 72 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.82 रुपये है। खेल समाचार में क्रिकेट तस्मानियन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कड़ी निंदा की है। उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर सेक्सटिंग खुलासे के बीच टिम पेन के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पेन ने शुक्रवार को टेस्ट कैप्टन के पद से इस्तीफा दे दिया था जब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने 2017 में एक महिला क्रिकेट तस्मानिया कर्मचारी को यौन संदेश और एक अनुचित छवि भेजी थी। क्रिकेट तस्मानिया के अध्यक्ष एंड्रू गैगिन का कहना है कि टिम पेन पिछले 4 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहे हैं और पेन ने केपटाउन गेंद में छेड़छाड़ कांड के बाद राष्ट्रीय टीम की प्रतिष्ठा को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टिम पेन का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। अब मौसम का हाल। पर्थ में धूप बनी रहेगी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 29 डिग्री रहने की संभावना। एडलेड में बारिश होने की आशंका। न्यूनतम तापमान 16, अधिकतम तापमान 24। मेलबर्न में हल्की बरसात के बाद की उमस के आसार। न्यूनतम 17 और अधिकतम 23 डिग्री। कैनबरा में बारिश बढ़ने की संभावना और न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री। सिडनी 1 या 2 बौछार पड़ने की आशंका। न्यूनतम 17 और अधिकतम 26 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना। न्यूनतम 21 और अधिकतम 27 डिग्री। डार्विन में बौछार के साथ तूफान की संभावना। न्यूनतम 27 और अधिकतम 34 डिग्री। उधर इंडिया में भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान होगा 26 डिग्री। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।